नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन ना ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, चार्ल्स प्लैट की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वॉल्यूम 2। तीन खंडों वाली संदर्भ श्रृंखला का वह भाग है जो सिग्नल प्रोसेसिंग से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक अवयवों पर केंद्रित है। इसका विषय LED, LCD, ऑडियो उपकरण, थायरिस्टर, डिजिटल लॉजिक और प्रवर्धन है। यह पारंपरिक क्रमबद्ध पाठ्यपुस्तक या परियोजना पुस्तक नहीं है, बल्कि किसी विशेष पुर्जे को समझने और चुनने के लिए बनाया गया व्यावहारिक विश्वकोश है। प्रत्येक अवयव के संदर्भ में पुस्तक उसके कार्य, कार्यविधि, उपयोगिता, उपलब्ध प्रकारों और व्यावहारिक सीमाओं को स्पष्ट करने का प्रयास करती है। तस्वीरें, परिपथ, आरेख और योजनाबद्ध चित्र पाठक को केवल नाम या प्रतीक याद रखने के बजाय वास्तविक पुर्जे और उसके प्रयोग के बीच संबंध समझने में सहायता देते हैं। लेखक का लक्ष्य डेटा शीटों, बिखरे ऑनलाइन स्रोतों और अधूरी सामान्य सलाह के बीच एक अधिक सुलभ, तथ्य जांचित संदर्भ देना है। इसलिए यह खंड शुरुआती पाठक के लिए अवधारणात्मक आधार और अनुभवी निर्माताओं के लिए त्वरित तकनीकी मार्गदर्शन दोनों भूमिकाएं निभाता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, LED और LCD को केवल संकेतक नहीं, नियंत्रित प्रकाश और प्रदर्शन प्रणालियों के रूप में समझना। पुस्तक का एक केंद्रीय योगदान यह है कि LED और LCD को साधारण आउटपुट पुर्जों की तरह सीमित नहीं करती। LED के मामले में प्रकाश उत्पादन, रंग, चमक, धारा सीमा, ऊष्मा और डिमिंग जैसे व्यावहारिक प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किसी LED को सीधे वोल्टेज स्रोत से जोड़ना क्यों जोखिमपूर्ण हो सकता है, या अलग पैकेज और रंगों में प्रदर्शन क्यों बदलता है? ऐसे प्रश्न परियोजना की विश्वसनीयता तय करते हैं। पुस्तक के दृश्य उदाहरण इस अंतर को समझने में सहायक हैं कि परिपथ प्रतीक, वास्तविक पैकेज और स्थापित अवस्था एक जैसे नहीं होते। LCD के साथ चुनौती अलग है। वह प्रकाश पैदा करने वाला माध्यम नहीं, बल्कि प्रकाश को नियंत्रित करके सूचना दिखाने वाली प्रणाली है। इसलिए डिस्प्ले चयन में पठनीयता, बैकलाइट, ड्राइविंग व्यवस्था और अपेक्षित सूचना की प्रकृति पर विचार करना पड़ता है। यह दृष्टि पाठक को केवल आकर्षक डिस्प्ले चुनने से आगे ले जाती है। वह समझता है कि संकेतक LED, संख्यात्मक डिस्प्ले और LCD मॉड्यूल अलग उपयोग स्थितियों के लिए बने हैं। विकल्पों, सामान्य समस्याओं और उनके समाधान पर ध्यान देना इस खंड को प्रयोग करते समय विशेष रूप से उपयोगी बनाता है। दूसरा, ऑडियो अवयवों में विद्युत संकेत को सुनने योग्य ध्वनि में बदलने की व्यावहारिक श्रृंखला। ऑडियो संबंधी भाग यह स्पष्ट करता है कि ध्वनि परिपथ केवल स्पीकर जोड़ देने से पूरा नहीं होता। ऑडियो प्रणाली में संकेत का स्तर, स्रोत की प्रकृति, रूपांतरण, प्रवर्धन और आउटपुट ट्रांसड्यूसर परस्पर जुड़े निर्णय हैं। बहुत कमजोर संकेत को पर्याप्त शक्ति दिए बिना स्पीकर से उपयोगी ध्वनि नहीं मिलेगी, जबकि अनुपयुक्त स्तर या गलत जोड़ शोर विकृति अथवा उपकरण की क्षति पैदा कर सकता है। इसलिए पुस्तक अवयव केंद्रित ढंग से बताती है कि अलग ऑडियो पुर्जे क्या करते हैं और किस स्थिति में उनकी आवश्यकता होती है। तस्वीरों तथा आरेखों की भूमिका यहां महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैक, माइक्रोफोन, बजर, स्पीकर और संबंधित कनेक्शन वास्तविक रूप में पहचानने पड़ते हैं। पुस्तक व्यापक ऑडियो इंजीनियरिंग का सिद्धांत ग्रंथ होने का दावा नहीं करती। उसकी शक्ति इस बात में है कि पाठक को किसी खास घटक के चयन, वेरिएंट, पिन व्यवस्था या स्थानापन्न विकल्प के बारे में उपयोगी प्रारंभिक संदर्भ मिल सके। इस तरह पाठक सिग्नल और शक्ति के अंतर को समझते हुए साधारण अलार्म, ध्वनि सूचना या छोटे ऑडियो आउटपुट वाले परिपथों के फैसले अधिक सावधानी से ले सकता है। यह व्यावहारिक सीमा भी स्पष्ट रहती है कि उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो डिजाइन के लिए अतिरिक्त मापन, परीक्षण और विशिष्ट दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है। तीसरा, थायरिस्टर द्वारा स्विचिंग और शक्ति नियंत्रण के बीच का संबंध। थायरिस्टर का समावेश पुस्तक को केवल निम्न शक्ति डिजिटल परियोजनाओं की सीमा से बाहर ले जाता है। ये अर्धचालक उपकरण ऐसी स्थितियों में उपयोगी होते हैं जहां किसी संकेत से अपेक्षाकृत अधिक शक्ति वाले भार का नियंत्रण करना हो। इनके व्यवहार को साधारण ट्रांजिस्टर स्विच के समान मान लेना भ्रामक हो सकता है, क्योंकि ट्रिगर होने, चालू बने रहने और बंद होने की उनकी स्थितियां अलग कार्यविधि मांगती है। पुस्तक का अवयव केंद्रित प्रारूप पाठक को इस प्रकार के अंतर पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। वह यह देख सकता है कि किसी पुर्जे की उपयोगिता केवल उसके नाम से नहीं, बल्कि उसके ट्रिगरिंग व्यवहार, धारा वहन क्षमता, वोल्टेज सीमाओं और प्रयुक्त परिपथ के प्रकार से तय होती है। शक्ति नियंत्रण के अनुप्रयोगों में सुरक्षा भी अनिवार्य मुद्दा है। गलत रेटिंग, अनुचित ऊष्मा प्रबंधन या उच्च वोल्टेज के साथ असावधानी केवल परिणाम खराब नहीं करती, बल्कि जोखिम भी बढ़ा सकती है। पुस्तक विकल्पों, सामान्य उपयोग त्रुटियों और समाधान की चर्चा के माध्यम से पाठक को डेटा शीट पढ़ने और सही श्रेणी का अवयव चुनने के लिए बेहतर आधार देती है। हालांकि यह पेशेवर विद्युत सुरक्षा प्रशिक्षण का विकल्प नहीं है। इसकी वास्तविक उपयोगिता यह है कि यह थायरिस्टर को रहस्यमय नाम के बजाय स्पष्ट व्यवहार और सीमाओं वाले शक्ति नियंत्रक उपकरण के रूप में स्थापित करती है। चौथा, डिजिटल लॉजिक में बुलियन निर्णयों से वास्तविक एकीकृत परिपत्तक की दूरी। डिजिटल लॉजिक वाला भाग इलेक्ट्रॉनिक्स में निर्णय लेने की भौतिक भाषा पर केंद्रित है। लॉजिक गेट, फ्लिप फ्लॉप और संबंधित एकीकृत परिपथों का उपयोग तब होता है जब परिपथ को इनपुट स्थितियों के आधार पर निश्चित आउटपुट देना हो, परंतु किसी गेट का तार्किक कार्य जानना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक प्रयोग में सप्लाई वोल्टेज, पिन विन्यास, लॉजिक स्तर, इनपुट की अनिश्चित अवस्था और आउटपुट की भार क्षमता भी मायने रखती है। पुस्तक की संदर्भ शैली इस सिद्धांत और व्यवहार के बीच पुल बनाती है। पाठक किसी घटक के प्रकारों और उपयोग के अंतर को देखकर समझ सकता है कि एक ही तार्किक कार्य अलग परिवारों या पैकेजों में अलग व्यावहारिक गुण रख सकता है। यह विशेष रूप से ब्लैकबोर्ड प्रयोगों और मरम्मत जैसी स्थितियों में उपयोगी है जहां गलत दिशा में लगाया गया चिप या असंगत वोल्टेज स्तर पूरी व्यवस्था को विफल कर सकता है। डिजिटल लॉजिक को माइक्रोकंट्रोलर का विकल्प या विरोधी तकनीक मानने के बजाय पुस्तक उसे स्वतंत्र निर्माण खंडों के रूप में देखने का आधार देती है। साधारण टाइमिंग, काउंटिंग, चयन और स्थिति स्मरण जैसे कार्य इन्हीं से निर्मित हो सकते हैं। फिर भी इसका उद्देश्य डिजिटल डिजाइन का पूर्ण पाठ्यक्रम देना नहीं, बल्कि विशिष्ट लॉजिक अवयव को पहचानने, उसके उद्देश्य को समझने और सुरक्षित ढंग से लागू करने के लिए विश्वसनीय जानकारी देना है। अंत में प्रवर्धन में संकेत की मात्रा बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता बचाए रखने का संतुलन प्रवर्धन का विषय इस खंड के अन्य भागों को जोड़ता है, क्योंकि सेंसर या ऑडियो स्रोत से आया संकेत अक्सर सीधे उपयोग योग्य नहीं होता। प्रवर्धक का कार्य संकेत की शक्ति या स्तर बढ़ाना है, लेकिन सफल प्रवर्धन केवल अधिक आउटपुट प्राप्त करना नहीं है। शोर, विकृति, स्थिरता, ऊष्मा और भार के साथ अनुकूलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पुस्तक का दृष्टिकोण पाठक को यह समझने में मदद करता है कि छोटे सिग्नल प्रवर्धन और शक्ति प्रवर्धन की जरूरतें अलग हो सकती हैं। किसी परिपथ में वोल्टेज गेन उपयोगी हो सकता है, जबकि दूसरे में स्पीकर चलाने के लिए अधिक शक्ति क्षमता आवश्यक होगी। अवयवों के प्रकार, पैकेज और विकल्पों पर व्यवस्थित जानकारी इस चुनाव को अधिक ठोस बनाती है। व्यवहारिक परिपथों में गलत बायसिंग, अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति या ऊष्मा विसर्जन की उपेक्षा अपेक्षित परिणाम को खराब कर सकती है। इसलिए सामान्य समस्याओं और समाधान का उल्लेख केवल अतिरिक्त सामग्री नहीं, बल्कि डिजाइन की विश्वसनीयता से जुड़ा हिस्सा है। यह खंड किसी एक आदर्श प्रवर्धक परिपथ को सार्वभौमिक समाधान नहीं बताता। इसके बजाय यह पाठक को पुर्जे की क्षमता, सीमाएं और उपयोग परिस्थिति समझने की आदत देता है। यही आदत तब उपयोगी होती है जब उसे रेडीमेड मॉड्यूल, अलग एकीकृत परिपथ या विविध अवयवों के बीच निर्णय लेना हो। निष्कर्ष में, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वॉल्यूम 2 उन विद्यार्थियों, हॉबी निर्माताओं, शिक्षकों, मरम्मत में रुचि रखने वाले पाठकों और कार्यरत इंजीनियरों के लिए सबसे उपयोगी है जिन्हें किसी विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयव पर जल्दी व्यवस्थित और व्यावहारिक जानकारी चाहिए। शुरुआती पाठक इससे LED, डिस्प्ले, ध्वनि, लॉजिक और प्रवर्धन के मूल संबंध समझ सकता है। अधिक अनुभवी पाठक विकल्पों, पैकेजों, सामान्य त्रुटियों और स्थानापन्न पुर्जों की जानकारी के लिए इसे कार्य मेज संदर्भ की तरह उपयोग कर सकता है। इसकी खासियत विषयों की व्यापक सूची भर नहीं, बल्कि अवयव के कार्य, उपयोग, रूपांतर और सीमाओं को साथ रखने की पद्धति है। तस्वीरें, योजनाबद्ध आरेख और परिपथ चित्र उस दूरी को घटाते हैं जो अक्सर डेटाशीट की संक्षिप्त भाषा और वास्तविक निर्माण के बीच रह जाती है। समान श्रेणी की अनेक पुस्तकें या तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का क्रमबद्ध पाठ पढ़ाती है या फिर केवल परियोजनाएं बनवाती है। यह पुस्तक उन दोनों से अलग पुर्जे केंद्रित संदर्भ के रूप में काम करती है। इसकी सीमा भी इसी में है। यदि पाठक को व्यापक परिपथ विश्लेषण, उन्नत गणितीय डिजाइन या पूर्ण परियोजना निर्देश चाहिए तो उसे अतिरिक्त स्रोतों की आवश्यकता होगी। फिर भी सिग्नल प्रोसेसिंग से जुड़े आम अवयवों को पहचानने, सही संदर्भ में चुनने और समस्याओं का आरंभिक निदान करने के लिए यह खंड असाधारण रूप से केंद्रित और उपयोगी साधन है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं चार्ल्स प्लैट, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।